Gadol Shalom Prabhupada Ki Jai. Prabhupada Shrimad Bhagavad Gita Yathadu Ki
Jai.
Aaj hum Shrimad Bhagavad Gita Yatharup ka Satarva adhyay jo shraddha ke vibhag, shraddha ke vibhag, teen prakar ki shraddha. To ye Arjun puchta hai sarvapratham shlok mein, ye shastram vidhim utsrujya yajante shraddhayan vinta tesham nishthatu ka krishna sattva mahot rajastama. अर्जुन ने कहा है, कृष्ण जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी या तमोगुणी है? तो अगले अध्याय में, 16वें अध्याय में सूर और असुर यानी कि दिव्य संपत्ति वाला और आसुरिक संपत्ति वाला दो प्रकार की प्रकृति बताइए. हमारे में ही दोनों प्रकृति मौजूद है, अपने शरीर में देवता भी बस रहे हैं और असुर भी बस रहे हैं दोनों. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि 16वें अध्याय में से ये निष्कर्ष निकलता है, कि जो शास्त्रों का नियमों का पालन नहीं करता है वह असुर है और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है. यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो, ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख न हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है. क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवता तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है. तो भगवान क्या उत्तर देते हैं? त्रिविधा भवती श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेती ताम शृणु. भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी. अब उसके विषय में हमें सुनने की आवश्यकता है. प्रभुपाद जी कहते हैं, जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश इनका पालन नहीं करते, हमारे परिवार में कुछ ऐसे संयोग पैदा हो जाते हैं कि शास्त्र के विधि विधानों जानते हैं लेकिन संयोग ऐसे हैं कि विधानों का पालन नहीं करते हैं, किसी भी बहाने वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं क्योंकि वहां भगवान के कानूनों का वर्चस्व नहीं या उनका अधिकार नहीं, भगवान के कानून का अधिकार नहीं जमाते, बल्कि प्रकृति के गुण यानी कि अपने भौतिक प्रकृति के गुणों का दबाव उन पर पड़ता है, तो उसके द्वारा वो शासित होते हैं यानी नियंत्रित होते हैं. वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं. अगले जन्म में हम कौन से गुण में थे, कौन से भाव या कौन से गुण को याद करके हमने शरीर त्यागा है, उसी प्रकार का गुण हमें ये दूसरे जन्म में मिलता है. तो उसके अनुसार विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती ही रहती है, जन्म जन्मांतर गुणों के प्रभाव से हमें ऐसे शरीर प्राप्त होते हैं जिसके द्वारा हम ये भौतिकता में दबोए रहते हैं, जन्म मरण का कारण बनता है। यानी कि जीव प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहता है, जीव अपने निजी गुणों को दाब देता है, प्रकृति के गुण उस पर सवार हो जाते हैं, इसलिए प्रकृति भौतिक प्रकृति को अधीन होता है। यानी कि ये भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां बनाता रहता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है तो यह उसकी मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में प्रवर्तित कर सकता है। ज्यादातर कलयुग में हम सभी तमोगुण और रजोगुण से भरे हैं अपना शरीर, यानी कि ऐसी श्रद्धा प्राप्त करते ऐसे ही कार्य करते रहते हैं, ऐसा ही खाते हैं, ऐसे ही विचारधारा से दूसरों के साथ वर्ताव करते हैं। गुरु क्रमशः अपनी स्थिति जो शुद्ध सत्व की होती है वो अपने शिष्य पर असरकारक बनती है और शिष्य को उत्तेजित करता है कि तू भी कम से कम सत्वगुण में रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण से विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, अपना जीवन परफेक्ट नहीं कर सकता, अंधविश्वास बना रहता है। किस पर? प्रकृति के गुणों पर। प्रकृति हमें धोखा देती है, शरीर छीन लेती है, अपनी मन में रह जाती है, लेकिन गुणों का प्रभाव हमें छोड़ता नहीं। जिस गुणों की प्रकृति है वो हमें धोखा देती है, मन में छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन जो गुणों द्वारा हमारा स्वभाव बना है वो तो दूसरे जन्म में वही प्राप्त होगा। तो हमें प्रकृति के किसी गुण विशेष में, चाहे वो तमोगुण हो, रजोगुण हो या सात्विक गुण हो, इसमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी उसका उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोमयम पुरुषो यो यक्षस स एव परः। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है और अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव विशेष श्रद्धा से युक्त हो जाता है। यानी कि श्रद्धा कैसे पैदा होती है? गुणों के संग में। गुणों के संग में सात्विकी, राजसी और तामसी श्रद्धा पैदा होती है। तो जो सात्विकी श्रद्धा वाले हैं तो क्या करते हैं? देखिए, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षस और राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों का प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेश अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय होते हैं। शास्त्रों का आदेश है केवल भगवान ही पूजनीय होते हैं, लेकिन जो शास्त्रों के आदेश में अभिज्ञ नहीं, यानी कि शास्त्रों क्या कह रहे हैं वो जानता नहीं है, उस पर श्रद्धा नहीं, यानी कि भगवान पर सीधी श्रद्धा नहीं रखते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं उस पर श्रद्धा नहीं रखते हैं। वे अपने गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं वो सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं, इन देवताओं में ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र चंद्र तथा सूर्य भी सम्मिलित है। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता का पूजन करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी है वो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता में एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था। प्रभुपाद जी कहते थे वो हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर दिया था। इस प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतया किसी प्रबल मनुष्य को या ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा, एक सा ही फल प्राप्त होगा। यहाँ इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं। जो तमोगुणी है अंधकार में है वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी भूत मृत पानी का भी कब्र पर भी पूजा करते हैं, मर गया है। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इस प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं और यदि उन्हें इनका पता चलता है तो कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा विभिन्न प्रकार के, वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सत्वम विशुद्धम वासुदेव सद्वितम्। विशुद्ध सत्व जो है, विशुद्ध सत्व वो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को लागू होता है। इसीलिए कम से कम हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए सत्व गुण में आने की आवश्यकता रहती है। हमें कृष्ण भगवान की यदि पूजा करनी है तो तमोगुण या रजोगुण के स्वभाव के अनुसार जो जो कार्य है उसे हम पूज नहीं सकते। भगवान आगे कहते हैं, अशास्त्रवेतम घोरम तप्यन्ते तपोजनाः दम्भा अहंकार संयुक्ता कामराग बलन्विता कर्षयन्त शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतस माम चैवान्त शरीरस्थम तान विद्य असुर निश्चयान। जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध घोर कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते वे असुर कहलाते हैं। हिरण्यकशिपु ने ऐसा तप किया था, सात्विक था ही नहीं, अपने शरीर को इतना कष्ट दिया कि सारा शरीर जो चींटियां होती है उसने खा लिया, सिर्फ उसकी प्राण हड्डियों में मज्जा में बनी रही, फिर भी उसने तप नहीं छोड़ा। तो उसकी अग्नि से सारा देवताओं का राज स्वर्गलोक में सब घबराने लगे। तो ब्रह्मा जी को कहा कि जा इनको जरा समझाओ। तो ब्रह्मा जी गए, पानी से छिटका मारा और उसको फिर से अपनी मूल स्थिति दे दी कि भैया ये क्यों घोर तप क्यों कर रहा है, सबको परेशान करने वाला है, अपनी अंदर आत्मा को भी परेशान करने वाला असुर कहलाता है, ऐसा घोर तप नहीं करना चाहिए। आहार सत्व भी सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञ तपस तथा दानम तेषां भेदमिमं सुनो। यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ के लिए, तपस्या के लिए, दान के लिए भी सत्य है। अभी उनके भेद के विषय में सुनो। भगवान कहते हैं प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन यज्ञ तपस्या तथा दान में भी भेद होते हैं, वे सब एक से नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या करना चाहिए वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ भोजन या दान की को एक सा मानकर उसमें अंतर नहीं कर पाते वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो वे कहते हैं कि मनुष्य को चाहे वो कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते, ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रमित करते रहते हैं। आयु सत्वारोग्य सुख प्रति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा रद्य आहार सात्विका प्रिय। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयुष्य बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। कवटम लवणात्क्षण विक्षण आहार राजस्य चेष्टा दुख शोक मय प्रदाह। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अत्यधिक तीखे खट्टे नमकीन गरम चटपटे शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। यातयायम गतरसम पुतिम पर्युपिषतम च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामसम प्रियम। खाने में 3 घंटे पूर्वक पकाया गया स्वाद विहीन वियोजित एवं सड़ा जूठा तथा अस्पृश्य वस्तु से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। आहार यानी कि भोजन का उद्देश्य आयुष्य को बढ़ाना है, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है, इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयुष्य को बढ़ाने वाला होता है, यथा दूध व्यंजन चीनी चावल गेहूं फल तथा तरकारियां। ये भोजन सत्वगुणी व्यक्ति को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे बुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों से साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध है। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों को उल्लेख है उनका पशुवत से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी यानी कि वसा जो होता है दूध के रूप में उपलब्ध है जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दूध मक्खन पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है उससे निर्दोष पशुओं को मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पाशविक मनोवृत्ति है जिनके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करके की सुसंस्कृत विधि से दूध है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर दाल दलिया आदि प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। जो राजस भोजन कटु बहु लवणीय तथा अत्यंत गर्म चटपटा होता है वह आमाशय यानी कि पेट में जो जठराग्नि होती है उसको घटाकर वो रोग उत्पन्न करता है। तामसी भोजन अनिवार्यतः वासी होता है। खाने से 3 घंटे पूर्वक बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसाद को छोड़कर तामसी माना जानता है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है जिसे तामसी लोग प्राय आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उसे मुख मोड़ लेते हैं। वो सोयाबीन का क्या वो है? नहीं नहीं वो क्या सड़ा हुआ सॉस बनाते हैं है? नहीं नहीं टेरिया की सॉस हाँ नहीं मशरूम तो डालते हैं ऊपर, लेकिन जो सॉस है सड़ा है हाँ, लेकिन इसमें नमक इतना डालते हैं कि सड़ा का पता नहीं चलता उसको, प्रिजर्वेटिव नहीं तो सड़ जाता, इतना नमक डालते हैं
उसमें नहीं गए
हाँ। तो ये तामस पैदा करता है। तो उच्छिष्ट जूठा भोजन उत्थिष्ट यानी जूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो भगवान को अर्पित हो चुका है, यानी कि बचा हुआ प्रसाद हमेशा ले लेना। या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु के द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो, अन्यथा ऐसा जूठा भोजन तामसी होता है और वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी न तो उसे छूना पसंद करते न खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि तरकारियां आटे तथा दूध की बनी वस्तु भक्ति पूर्वक व्यक्त किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, निसंदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्वक क्यों न तैयार हुआ हो। कई चीजें हम प्रिजर्व करते हैं, जो मछली होती है इत्यादि आगे से बना लेते हैं, चूरमे के लाड़ू बहुत दिन चलते हैं, वो बासी नहीं कहलाता। नहीं तो भगवान को जब भोग बनाने के लिए तैयार करते हैं, वो तुरंत 3 घंटे में अर्पित कर देना चाहिए, हम कई दिनों बाद खा सकते हैं। लेकिन जो सड़ता है, 3 घंटे बाद सड़ना शुरू हो जाता है पकाया, तो वो कभी नहीं खाना चाहिए। यानी कि तरल ताजा गरम गरम खिलाओ, पहले भगवान को अर्पित करो, भगवान का बचा हो। ये यज्ञ बनता है, यज्ञ शिष्टा सिनो संतु मुच्यंते सर्व किल विषय भोजन देते तो दम पापा ये पचात्मकार आत्म कारण। यज्ञ से उच्छिष्ट बचा हुआ जो भोजन है वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करना ही चाहिए, अन्यथा जो अपने लिए पकाता है वो सिर्फ पाप खाता है। तो भक्ति में भगवान की तरफदारी वाली, भगवान जैसे समझाते हैं, शास्त्र जैसे समझाते हैं, उसका पालन करके हमें आगे बढ़ना होता है। लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम हाँ विधि से बनाया जाए। विधि क्या होती है, हमारी भावना क्या है, बनाते समय भावना क्या है। भावना सिर्फ भगवान पर ही होनी चाहिए। जो चीज भगवान को पसंद नहीं है हम ना बनाए। अतएव भोजन जो रोगाणु रोधक खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित ही करना चाहिए। इसी तरह यज्ञ यानी कि हम जो कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, तो सेक्रीफाइस भी सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है वो देखना है। यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। संकीर्तन यज्ञ भगवान का नाम का फैलावा करना है, उसमें फल की इच्छा बिना, यानी कि हमें ये व्यापार नहीं, संकीर्तन कोई व्यापार नहीं, उससे हम अपनी ये चलाएंगे वो चलाएंगे, ये नहीं। संकीर्तन यज्ञ भगवान की प्रीति के लिए, इसमें फल की अपेक्षा नहीं। जहां उस संकीर्तन यज्ञ में दिल को छुआ जाता है, जिसमें श्रद्धा पैदा होती है, भगवान का नाम गुण गाने के लिए तैयार होता है और भगवान का कहे अनुसार करने को तैयार होता है, तो वो भक्तिमय जीवन बनता है। तो ये 3 प्रकार के यज्ञ की बात कर रहे हैं। सामान्यतया यज्ञ किसी भी प्रयोजन से किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा से संपन्न किया जाना चाहिए, इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरण, मंदिरों में या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन यह सतोगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर में जाए, भगवान को नमस्कार करे, फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने से ही मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अच्छा विग्रह को नमस्कार करने जाए, इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्र के आदर्श का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है तो वो राजसी कहलाता है। कभी कभी लोग स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए या किसी लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान करते हैं, ऐसे अनुष्ठान राजसी माना जाता है। जो शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना यानी कि इनको तिरस्कार करके यज्ञ करते हैं, प्रसाद वितरण किए बिना करते हैं, वैदिक मंत्रोच्चार किए बिना या पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी है। यानी कि यज्ञ में इन चार पांच चीजों जो बताई गई है वो संपन्न होनी चाहिए। कौन कौन सी है? शास्त्र का आदेश का पालन करना चाहिए यज्ञ करते समय, प्रसाद वितरण करना चाहिए यानी कि भोजन, यज्ञ को पहले आहुति देते हैं और बाद में सब भोजन खाते हैं तो ये प्रसाद बन जाता है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी करना होता है, पुरोहितों को दक्षिणा भी देनी पड़ती है, तथा श्रद्धा के साथ करना चाहिए, नहीं तो वो तामसी यज्ञ है। जो तमोगुण में श्रद्धा कहलाती है तो वास्तव में वो अश्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा के लिए धन अर्जित करने के लिए करते हैं तो फिर हम इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करते हैं, मनोरंजन में व्यर्थ व्यस्त करते हैं, ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई उत्तम लाभ नहीं पहुंचाता। कोई कहता है कि मेरे घर में चलो गाड़ी आए, टीवी आवे, ये सब कुछ आवे, मैं भगवान के लिए यज्ञ करूंगा। ज्यादातर ये लोग 10-15 दिन में या पूर्णमासी पर वो सत्यनारायण का व्रत करते हैं, कथा करते हैं, लेकिन भौतिक लाभ के लिए करते हैं। तो ये यज्ञ सात्विक कहला जाता है या राजसिक? भौतिक लाभ यानी कि वो वहां इतने मनोरंजन के साधन प्राप्त होते हैं जो इंद्रिय तृप्ति बढ़ाने वाले हैं, भगवान पर श्रद्धा कम रखते हैं, तो ऐसे यज्ञ सात्विक नहीं माना जाता, राजसिक कहलाता है। और यदि कोई गलत धंधों में ही काम करता है तो तामसिक बन जाता है। इसलिए न तो खुद को लाभ होता है न समाज को लाभ होता है। ब्राह्मण परमेश्वर गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा के शारीरिक तप कहलाता है, तपश्चर्या। यहां पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देव योग्य ब्राह्मण गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों के वैदिक ज्ञान में ये पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरलता बनाना सीखे। वह ऐसा कोई कार्य न करे जो शास्त्र सम्मत न हो। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त कोई इंद्रिय तृप्ति में रत न हो, क्योंकि शास्त्र में केवल जो धर्म के अनुसार वैवाहिक जीवन बिता रहे वहां ही सिर्फ मान्यता दी गई है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं जो सत्वगुणी कहलाती है। सच्चे भाने वाले हित कर तथा अन्य को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना यह वाणी की तपस्या है। हम तो खाली पीली बकवास करते हैं और कुछ न हो गया एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, ये इसकी वाणी से उसे कोई प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ वो क्लेश ही पैदा करता है। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। हमें मन में ये भाव रखने चाहिए, संतोष रखना चाहिए, आत्मसंयम, जीवन की शुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ये मन की तपस्या है। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न या तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है, मन की, वाणी की और शारीरिक। तीनों तपस्या सात्विक की। अभी देखो दूसरी ओर, जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसिक, रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। एक काम चलाओ फल देने वाली है, थोड़ी देर वाह वाह करके लोग चले जाएंगे, बाद में वहीं का वहीं रह जाएगा। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न यानी कि खुद आत्मा को परेशान करने के लिए या अन्यों को विनष्ट करने के लिए या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी है। इसलिए हिरण्यकशिपु की जो तपस्या हुई वो तामसी कहलाती है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा बिना समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है तो सात्विक माना जाता है। किंतु जो दान दूसरों पर उपकार करने की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है वह रजोगुणी या राजसिक कहलाता है। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित स्थान, ध्यान या आदर से दिया जाता है तो वह तामसी कहलाता है। तो हमें ये श्रद्धा के जो विभाग बताए हैं तो कम से कम सात्विक की श्रद्धा पर आना चाहिए। हमारे परंपरा में सर्वप्रथम ये जो ज्ञान है भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारी दुनिया जो माया के तीन गुणों द्वारा संचालित है, माया ही यस्य जगदंड सतानी सूते, ये जो माया है, तब भगवान के आदेश अनुसार सारे ब्रह्मांडों को पैदा करती है और सारे ब्रह्मांडों का संचालन करती है। कैसे मैनेजमेंट करती है? तीन गुणों द्वारा। त्रैगुण्य तद विषय वेद विधायमान। माया अपने तीन गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण द्वारा सारे संसार का संचालन करती है। लेकिन जब भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, भगवान की ओर अग्रसर होना चाहता है, जो अपना जीवन सिद्ध करना चाहता है, तो ब्रह्मा कहते हैं मैं रजोगुण का स्वामी हूं, रजोगुण कंट्रोल करने का अवतार लेकर मैं आया हूं, मुझे भी सत्वावलंबी सत्वगुण में स्थिर रहने की आवश्यकता होती है। इसलिए ब्रह्मा जी रजोगुणी होते हुए भी सत्वगुण में रहने के लिए तपश्चर्या उनको करनी पड़ती है, बुद्धि से सत्वगुण का अवलंबन करना पड़ता है। सत्वावलंबी क्यों? क्योंकि परसत्व, परसत्व यानी कि सत्व से भी ऊपर, आत्मा सत्व से भी ऊपरी होती है। तो आत्मा को जानने के लिए हमें सत्व गुण का उपचार करके उसके स्वभाव को जान कर सकते हैं। तो सत्वावलंबी परसत्वम और विशुद्ध सत्वम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम बजान। भगवान श्री कृष्ण विशुद्ध सत्व है। विशुद्ध सत्व यानी कि अभी बताया सत्वम विशुद्धम वासुदेवम शब्दितम, विशुद्ध सत्व को वासुदेव कहते हैं। जब वसुदेव और देवकी की तपश्चर्या देखें, भगवान को पुत्र पाने के लिए क्या क्या कड़ी तपश्चर्या की थी, तो वो तपश्चर्या दो दो मिलेनियम में सफल नहीं हुई। भगवान बेटे के रूप में आए तो सही, लेकिन वात्सल्य भाव बताने का कोई मौका नहीं प्राप्त होता। और तीसरे जन्म में भगवान देवकी और वसुदेव के रूप में जब आए, भगवान इनके यहां बेटे बन के आए, तो कैसे आए? सर्वप्रथम इतनी सारी तपश्चर्या करके ये लोग इतने विशुद्ध हो गए, तो वसुदेव की स्थिति विशुद्ध सत्व की है, इसका हृदय इतना निर्मल बन गया, तो ये निर्मलता विशुद्ध सत्व की, तो भगवान उसके हृदय में प्रकट होते हैं। सर्वप्रथम उसके हृदय में प्रकट होते हैं वसुदेव के। वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी को दीक्षित किया और भगवान अपने हृदय में से उसके हृदय में बिठा दिए। भगवत प्राप्ति तो हो गई वसुदेव को, लेकिन देवकी तो मां बन भगवान की कैसे बनेगी? मैं तेरे हृदय में भगवान स्थापित करता हूं, और देवकी जब दीक्षित हो गई तो इतनी तेजस्वी बन गई कि देवता लोग भी अचंभे में पड़ गए, क्योंकि अरे भगवान ने देवकी के पेट में आश्रय लिया, अभी तो वो अभी अवतरने की तैयारी हो रही है। सभी दौड़ के आए और देवकी की प्रशंसा करने लगे और प्रार्थना करने लगे भगवान को कि जल्दी करो, एक्सपेडाइट। वहां वो 9 मास 10 दिन की गर्भवती नहीं रही, न तो उसने प्रसूति करके भगवान को जन्म दिया है। भगवान कहां पैदा होते हैं? अपने ही हृदय में। लेकिन हृदय की शुद्धता के लिए हमें ये सारे उपचार करने पड़ते हैं। 3 प्रकार की श्रद्धा में सात्विक की श्रद्धा हो, सात्विक की श्रद्धा से सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक व्यवहार और भक्ति में उपयोग करके अपने आत्मा की स्वच्छता विशुद्ध सत्व की लाते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं। यानी कि आत्मानुभूति होती है और ईश्वर की भी अनुभूति होती है। ईश्वर की अनुभूति होते ही भगवान जो इच्छा कर रहे हैं कि चलो मुझे ट्रांसफर करो। भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में आ गए देवकी के सामने, वसुदेव के सामने, प्रसूति तो की नहीं, न तो बच्चे रोने की आवाज आई है। भगवान खड़े हो गए, देवकी कह रही है अरे आप तो वस्त्र पहनकर आए, आप तो हथियारों लेकर आए, यही लड़ाई शुरू हो जाएगी, हमें तो बेटा चाहिए, हमें तो आपके वात्सल्य भाव देखना। तो कह दे कि अरे ये जेल खाने में वात्सल्य भाव कैसे दिखाऊंगा? वात्सल्य भाव आप तो है ही मेरे माँ बाप, मैं पहले 2 युगों में भी आया हूं बेटा बन के, और इस बार भी 3री बार भी आया हूं क्योंकि आपकी भक्ति इतनी है। लेकिन भगवान आपको हमें मूल रूप में चाहिए, हमें आपके मूल रूप की जो लीलाएं हैं उसके लिए हमने आपको बुलाया है। तो भगवान कहते हैं जेल में लीला कैसे कर पाएंगे? ऐसे करो आप जेल में पड़े रहो, मैं लीला करने मुझे ले जाओ। वसुदेव को आदेश दिया कि हमें ले जाओ, कहां? गोकुल ले जाओ। मथुरा की जेल में जन्म हुआ तो गोकुल ले गए, वहां भगवान ने जो लीला की न तो देवकी ने देखी न तो वसुदेव ने देखी। लेकिन भगवान उन लोगों की तपश्चर्या, इन लोगों का त्याग पर कितने अपने आप को हवाले कर देते हैं। जब वृंदावन की लीला समाप्त करके कंस को मारने के लिए आए, वसुदेव और देवकी को कारागार से छुड़वाया, बाद में मथुरा का राज्य लिया, उसके बाद जरासंध के प्रहारों से उसको मारने की ओर तजवीज करके वो रण छोड़ के चले गए, द्वारका चले गए। द्वारका में वहां के राजा बनकर उन्होंने जो जो लीला की है, तो देवकी और वसुदेव को भी वहां ले गए द्वारका, लेकिन वृंदावन का भी नहीं ले गए। तो देवकी के मन में ये खटक रहा था। देवकी एक दिन बोली, हे बेटा, सारी दुनिया ने तेरी बाल्य लीला देखी, हम ही बाकी रहे। तो भगवान है, हम सब जानते हैं, लेकिन तू तेरी इच्छा है तो हमें भी बता दे, द्वारका में तेरी बाल्य लीला बता। तो भगवान कहते कि हाँ हाँ बता सकते हैं। तो ए दाऊ भैया आओ, तो बलदेव को बुलाया, ए बलदेव चलो यहां नया वृंदावन बना दो द्वारका में, मां को लीला करके बताया। और सचमुच सारे नया वृंदावन की रचना द्वारका में बलदेव ने की, और देवकी को एक एक लीला का परिचय करवाया। भगवान कहते जाते हैं, वहां सब लीला देखते रहते हैं, बात करते हैं, भगवान कमेंट्री देते हैं, पर भगवान ही लीला करते हैं और देवकी देख रही है। ये लीला भगवान सुनाते हैं सारी, पर देवकी समझ रही है। उसके धन्य भाग तो इतने हो गए कि भगवान लीला का वर्णन कर रहे हैं, और पीछे देखें तो रुक्मिणी भगवान की पत्नी दरवाजे के पास कान रखकर सुन रही है। तो रुक्मिणी उसकी पत्नी महालक्ष्मी है, तो उसकी पत्नी के हृदय में भगवान का बाल्य स्वरूप इतना बस गया कि वो भी ऐसी लीला की इच्छा कर रही है। तब भगवान को कह रही है, आपने देवकी माता को सारी लीला पुनः बताई, और मुझे आपका बाल्य स्वरूप एक इतना भाग गया है, तो क्या मैं आपकी मूर्ति बनाकर पूजा कर सकती हूं? तो भगवान कहते हां क्यों नहीं। तो ये रुक्मिणी को मूर्ति बनाकर दी, जिसमें भगवान छोटे से खड़े थे और जो माखन का बोलोना पकड़ के खड़े हैं, ये रुक्मिणी की मूर्ति थी। जब द्वारका समुद्र में चली गई तो ये मूर्ति भी चली गई थी, और उस पर गोपी चंदन का बड़ा गट्ठा बन गया था, तो किसी को पता नहीं। लेकिन उस समय बहुत सारे सौदागर ये भगवान की जो सारी संपत्ति दरिया में से निकाल निकाल कर दूसरी जगह बेचने जाते थे, अपने नौका में भर के, तो ऐसा गट्ठा उठाकर एक सौदागर जा रहा था। तो दक्षिण भारत में ये जो कर्नाटक प्रांत है ना, तो वहां उडुपी नामक जगह पर मध्वाचार्य का आश्रम था। तो मध्वाचार्य हो गए करीबन दसवीं सदी में हो गए, ईस्वी सन 10वीं सदी के 900 समथिंग ईयर्स पर, यानी कि कम से कम 1000 साल पहले की बात बता रहे हैं। तो उस समय मध्वाचार्य हनुमान जी का अवतार कहलाते, पवन पुत्र का अवतार कहलाते थे। तो उनको पता चला कि एक सौदागर आ रहा है, जिसमें भगवान का संकेत हो रहा है। तो सौदागर का जो नौका थी वो वहां आकर खटक गई तो वो मुश्किल में पड़ गया, उसने सोचा कि कोई हमें मदद करे, तो उसी समय पवन वेग से आए मध्वाचार्य, उसको कहा कि तेरी नौका में छुड़वा देता हूं एक शरत पर, मैं जो मांगू तो देगा, यहां देगा। तो ये सौदागर ये बड़ा गट्ठा को नौका का लंगर के उपयोग में लाता था। तो मध्वाचार्य ने फूक मारकर वाहन को फिर से तैरता कर दिया, क्योंकि पवन पुत्र है। तो सौदागर तो बहुत खुश हो गया, बोलो क्या चाहिए कि तेरा लंगर ला, अरे इतना भारी है कैसे ले जाए, अरे फिकर मत कर। तो वो तो लंगर उठाया और हनुमान जी की तरह पहाड़ जैसे उठा के अपने आश्रम में ले आए और अपने शिष्यों को कहा तोड़ो उसको। तो उसमें से मूर्ति निकली, आज भी उडुपी कृष्ण वहां पूजित है। ये रुक्मिणी देवी की मूर्ति है। रुक्मिणी देवी भगवान की पत्नी होकर भी भगवान की बाल्य लीला की सेवा करना चाहती। देखो भगवान का कितना मधुर वृंदावन का स्वरूप होगा। आज हम बृहद भागवतामृत की प्रस्तावना में पढ़ रहे थे, तो गोपी पुराणधन प्रभु ने बहुत बढ़िया वाक्य लिखा था कि नंद ब्रज, यदि उपासना करनी है तो नंद ब्रज। नंद का ब्रज क्या है? सारा ब्रज नंद ब्रज नहीं कहलाता, क्या दूसरे लोग भी थे? नंद ब्रज यानी असली वृंदावन। नंद ब्रज में जो गोपियां हैं उन्होंने भगवान की कैसे सेवा की, वो नंद ब्रज स्थल बताया जाता है। नंद महाराज का ब्रज, नंद नंदन कौन है? कृष्ण भगवान। तो ये नंद ब्रज की उपासना में जो गोपियों की सर्वश्रेष्ठ उपासना, उसकी तुलना में कोई नहीं आता। यदि भक्ति करनी है तो हमें ऊपर उठना ही पड़ेगा, अपने ये भौतिक सत्व रज और तमोगुण के प्रभाव से बाहर निकलना ही पड़ेगा। भक्ति ही परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र स्यात्। तीन गुणों पर विरक्ति बताना भक्ति का सर्वप्रथम मूल लक्षण होता है। तीन गुणों से परे होना है। हम भौतिक गुण में पड़े रहें और अपने आप को श्रद्धालु मानते रहें, गर्हित काम करते रहें, तो इसमें भगवान की उपेक्षा होती है। हमारी भक्ति आगे बढ़ाने के लिए हमें सत्वम शुद्धम वासुदेवम सत्वितम स्थिति पर ध्यान रखना चाहिए। तो अवश्य अपनी भक्ति आगे बढ़ सकती है। हमारे जीवन में जो जो अनर्थ है, जो तामसिक और राजसिक भाव से पैदा हुए हैं, तो भगवान का नाम रटन इत्यादि करके शुद्ध सत्व की स्थिति पर आ सकते हैं। तो सभी से हम विनंती करते हैं कि बोलो हरे कृष्णा,
हरे
कृष्णा,
हरे कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा,
हरे हरे,
हरे
हरे, हरे राम,
हरे राम,
हरे राम,
हरे राम,
राम राम,
राम राम,
हरे हरे,
हरे हरे।
ये महामंत्र तीनों गुणों से छुटकारा देता है, हमें अध्यात्म के गुण में स्थापित करता है, जो विशिष्ट रूप से भगवान का विशुद्ध सत्व, इनको समझने की हमें ताकत देता है। तो भगवत प्राप्ति का ये मूल सिद्धांत है, ये शास्त्र में बताया गया है। जो शास्त्र विधिवत सृज वर्तते काम कारत न सिद्धिम आपनोति न सुखम न परांगति। शास्त्र विधि का जो त्याग करके जो मनमानी भक्ति करने को चाहता है तो वह न सिद्धि पाएगा, न सुख पाएगा, न परांगति पाएगा। तो हमें इसलिए योग्य मार्गदर्शन की आवश्यकता है और प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु द्वारा ये प्राप्त हो सकता है, जो तीनों का मैं मनाकर हम यदि सुरक्षित रूप से भक्ति करते हैं तो इसमें कोई गिरने की संभावना नहीं है। अपनी भक्ति का यथार्थ हमें जो लाभ होना चाहिए वो अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, वो गारंटी श्री प्रभुपाद देते हैं। आप सब का बहुत बड़ा धन्यवाद। कोई प्रश्न है? जय जय श्री राधे श्याम वृंदावन नंद व्रज वृंदावन धाम।